अब अगली आयतों में देखिए कि जब लोग इज्जा का शिकार हो जाते हैं, जब लोग इस तरह से इन चीज़ों को लेने लग जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनके बारे में क्या फरमाते हैं, कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन, और कितनी ही हमने हलाक की बस्तियाँ, कितनी ही कौमें हमने इनसे पहले हलाक कर दी। ओ मक्का वालों, तुमको बड़ी बात थोड़ी हो, तुम कोई बहुत बड़े नागुज़ीर तो नहीं हो कि तुम्हारे बगैर हिदायत का ये काफिला चल नहीं सकता। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए हो, तुम्हें क्या पता कि ये क्या बड़ी बात थी, ये कौन थे, कैसे थे, तुमसे पहले बहुत बड़े बड़े दुनिया से गए। फना दो वला तही नमसास, तो जब अल्लाह का अजाब आया तो वो लगे चीखने चिल्लाने। जिस वक़्त अल्लाह का अजाब आता है तो उस वक़्त उनकी ज़ुबानों पर चीखो पुकार होती है। वला तही नमनास, हालांकि तब खुलासी का वक्त नहीं रहा। बड़ी ज़बरदस्त आयत है, मुझे तो पढ़ते हुए बिल्कुल सूरत हज का शुरू याद आ गया, आपको अंदाज़ा हुआ, जिसमें कहीं नज़लज़ला तसात इलाशय नज़ीम, क़्यामत का जलजिला बहुत बड़ा, और उसमें अगली आयतों में आता है कि जब अजाब की पकड़ आती है तो लगे वो भागने, तो क्या कहा, ला तरकुज़ू, मत भागो, चलो अपने उन्हीं घरों में जिसमें तुम बड़े आराम से रह रहे थे। उस वक़्त फिर वो कहते हैं कि हमने जुल्म किया। अल्लाह ताला कहते हैं जब इन पर पकड़ आती है, आज पकड़ से पहले अकड़ते हैं, लेकिन जब इनकी पकड़ का वक्त आता है तो उस वक्त लोग चीखते हैं चिल्लाते हैं, फना दो, चीखो चिकार, पकड़ो, धकड़ो पड़ जाती है। वह लाता, लाता वही है जो अरबी में ला है, बस ता लग गई, अलग से इतना समझ लें बस। बाज लोगों ने ला को अलग और ता को हीन के साथ किया, ला तहीना, दोनों बातों से समझ आ जाती है। यहाँ क्या समझा दिया कि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो फौरन चीखने लगते हैं, हालांकि फरमाया ही ना मनास, मनास नून वाव स्वाद से है, नौस भागने को कहते हैं, कि जब अल्लाह की पकड़ आती है फिर ये भागने की कोशिशें करते हैं, लेकिन उस वक़्त ये बच नहीं सकते। उस वक्त अगर इनको पता लग जाए कि हमारी पकड़ इतनी शदीद हो गई है, तो उस वक़्त फिर वो अपने आप को बचा नहीं सकते। ऐसे लोगों को आज फिक्र करनी है। आप देखिए, जो ज़िंदगी में अल्लाह के दीन से भागता है ना, वो मौत के वक्त में फिर पकड़ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वो पकड़ से बच सकते हैं उस वक़्त? नेवर, कभी हो नहीं सकता। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कहते हैं कि आज वक्त है, कुछ कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी अभी बाकी है थोड़ी सी, इसमें कुछ करके देख लो। जब मौत का फरिश्ता आएगा, मारेगा, तुम्हारे जोड़ों पे मारेगा, शामत आएगी, चीखोगे, लेकिन उस वक्त कोई वक्त नहीं होगा बचाने का और ना बचने का। मैं तो अभी तक उस शान नज़ुल के सहर से नहीं निकली जो इस सूरत का था। प्यारा नबी, मक्का की गलियाँ, लोग सादिक और अमीन कहते थे। बास कहते हैं कि स्वाद जो है ना, ये अल्लाह के नबी के लक़ब सादिक की तरफ इशारा है, कि सादिक उनफी कौली ही, कुछ कहते हैं सदका मोहम्मद, मोहम्मद जो कह रहे हैं वो सच है, कुछ भी कह लीजिए, बस हम तो इस पर यही कहेंगे कि वल्लाहु आलमु बिमुरादी, अल्लाह को पता है स्वाद से क्या मतलब है। लेकिन हमारे लिए इसमें फ़िक्र इस बात की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पेश करते हैं और लोग गधों की तरह वहाँ से भागते हैं, ऐसे भाग रहे हैं कि जैसे आप लोगों को किसी गुनाह की दावत दे रहे हैं, कोई गलत काम की दावत दे रहे हैं। इतना इनकार, इतनी ज़िद, इतना तकब्बुर, ये क्या अपने आप को समझते हैं? क्या इनके पास कोई ऐसी इसके मुकाबले की चीज़ है कि पेश करें? आज भी देखिए, कुरान की दावत के मुकाबले में इतना ज़बरदस्त रिएक्शन पेश करते हैं लोग, तो फिर जवाब में तुम भी कुछ करके दिखा दो, वो कुछ नहीं है, उसमें फिर ख्वाहिशात हैं या चंद बड़ों की बातें। असल में लड़ाई जो है ना, कुरान के साथ होती है, साहिब कुरान के साथ नहीं होती। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों को इनके हाल पे छोड़ दो, मैं खुद इनसे निपटूंगा। इनको लग पता जाएगा कि ये जिक्र वाले कुरान के साथ क्या मामला कर रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आज ये 100 दिन चोर के तो 1 दिन शाह का, आखिर तो पकड़ होगी और फिर उस वक़्त भागेंगे। वला तहीना मनास, फिर नहीं बच सकेंगे। वजह क्या है? अब देखिए, ऐसे नहीं लग रहा जैसे उनको रिएक्शन हो गया, कोई चीज़ लड़ गई है, तो अल्लाह ताला कहते हैं इनको मुश्किल के, क्या बड़ी बात कह दी मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कौन सी चीज़ ऐसी कह दी कि जो इनकी अक्लों से भी कबूल नहीं हो रही और इनका माशरा भी इसको पसंद नहीं करता। कितनी सीधी साधी बात की अल्लाह के इस बंदे ने, वाजिब अंजाहुम मुनज़िरुम मिनहुम। हाँ, इन्हें इस पे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इनके पास एक खबरदार करने वाला इन्हीं में से आ गया। असल मसला यह है। फिर देखिए नबूवत और बशरियत का मसला, कोई फरिश्ता आता, कोई जिन आता, कोई देव आता, फिर तो कहते वाह जी वाह, ये फलां मैसेज लेके आया, बहुत बड़ी बात है। वो मक्का की गलियों में नंगे पांव फिरने वाले एक आम शख्स इनके पास हिदायत की बात ले आया, ये बात इनको अजीब लगती है। देखिए नजर पैगाम पे नहीं है, पैगाम बर पे है। ये कौन है, किस खानदान का है, ये तो यतीम है, चचा नेपाला है जो खुद गरीब थे, दादा का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, ये कोई करनी वाला होता, कुछ इसके इख्तियार में होता तो ये मक्का का बादशाह होता, इसके आगे पीछे अर्दली फिरते, क्या हो गया? मुनजिरु मिनहुम कॉमन मैन। आज भी आप देखिए कि एक रिलीजियस पर्सन अगर अपनी सादगी की वजह से बिल्कुल वही हाल हुलिया पेश करके दुनिया में निकले जिसको लोग आज के दौर में मजाक का निशाना बनाएं, या मौलवी कहें या मुल्ला कहें, चार लोग उसकी बात न सुने। आज लोग जिस गेटअप में खुद बैठे होते हैं ना, उसी गेटअप वाले की बात सुनते हैं अमूमन। ठीक है गांव के लोग हैं, वो धोती पहने हुए किसी आलिम की बात सुन लेंगे, उनको परवाह नहीं कि धोती पहनी है, उसकी बात पे गौर करेंगे। वही धोती पहने हुए साहब किसी बहुत सूटेड बूटेड बेहतरीन 5 स्टार होटल में ले आए जाएं तो लोग पहले तो उनका हुलिया देकर कहेंगे क्या ये बात करेंगे, नहीं नहीं ये तो हमें भी धोतियां पहना देंगे, ये तो हमारी भी ये करवा देंगे, दाढ़ियां रखा देंगे, दिस एंड दैट। हमें खुद हैरत होती है किसी का इस्लामी हुलिया देख के, हम नहीं पूछते क्या वाकई इस्लाम इतना सख्त है, इतनी रिजिडिटी है इस्लाम के अंदर। तो अल्लाह के नबी के ऊपर एतराज़ करने वाले, अल्लाह ताला कहते हैं वकाल अल काफिरूना, और कहा काफिरों ने हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, ये है साहिर और कज़्ज़ाब है नऊज़ु बिल्लाह। साहिर क्यों कहते थे? क्योंकि आपकी बात दिल को लगती थी। और असल में हक बात का ये असर होता है, हक बात की ये पहचान है कि वो दिल के अंदर जाके खुप जाता है। और कज़्ज़ाब क्यों कहते थे? उनके बाप दादा और उनके रस्मों रिवाज से ऑपोजिट बातें अल्लाह के नबी कहते थे, कहते थे ये झूठ बोलता है, नऊज़ु बिल्लाह, ये झूठ लगाता है हमारे ऊपर, ये कहता है कुछ नहीं होगा, वो होगा, ये होगा, इसको हमारा कल्चर और हमारा तरीक़ेकार पसंद नहीं है। देखिए इतने सख्त लफ्ज़ हैं, लेकिन कुरान ने मुशरिकीने मक्का के कौल के तौर पर जूं का तूं पेश कर दिया। अगर आप सिर्फ इसको जुमला बनाए ना, हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, तो ज़रा अल्लाह के नबी के नाम के साथ हाजा का लफ्ज़ लगाएं तो दिल पे चोट नहीं पड़ती? ये अल्लाह का कलाम नहीं है, लेकिन अल्लाह को इतना गुस्सा है उनके इस कलाम पर कि वो उनके ही लफ्ज़ तोड़ के रख दिए कि ये कहते हैं तुझे, मेरे नबी को ये बातें कहते हैं। यहां से आप अंदाजा लगाइए कि मुखालफत क्या थी। पढ़ाते हुए मुझे अपने कंधों पर बोझ महसूस हो रहा है, रेजिस्टेंस कैसे करते होंगे, क्या वो माहौल था? आप देखिए कि अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें तो मक्की सूरतों के पिछले ग्रुप की जो 8 सूरतें हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत फुरकान से सूरत सजदा तक, और अब जो हम पढ़ें 13 सूरतें सूरत सबा से लेकर सूरत अलअहकाफ तक, ये 4 नबी से लेकर 8 नबी के बीच के दौर में नाजिल हुई। और ये वक्त था रेजिस्टेंस का, मुखालफतें, घर घर लड़ाइयाँ लगी हुई हैं, घर घर अल्लाह के नबी के खिलाफ लोग बातें करते हैं। अल्लाह अकबर, ये कैसे लगता है? बस चल रही है चल रही है, शिद्दत माहौल, बाहर के हमले, कोई इधर की बात कोई उधर की बात। शुरू में तो किसी ने आपकी दावत पे संजीदगी का इजहार ही नहीं किया, वो कहते थे ये किसी सर फिरे की बात है, थोड़े दिन में जुनून उतर जाएगा। बाज़ लोगों ने तो आके हमदर्दियां भी कर दी कि अच्छा कोई सेब का साया तो हम जाके जरा आपका इलाज करवा देते हैं। बाज़ का पक्का यकीन था कि चूंकि आप तन्हाई में गारे हिरा में रातें गुजारते हैं तो आपके ऊपर कोई सेब का हमला हो गया। एक दफ़ा उत्पा बिन रबिया शख्स ने आपसे हमदर्दी की और कहने लगा कि देखो ए मेरे भतीजे, अरब के बहुत सारे काहिनों और आमिलों के साथ मेरे बड़े गहरे ताल्लुक आते हैं, अगर तुम कहो तो मैं इनमें से किसी को बुलाकर तुम्हारा इलाज करवा दूं। अब ये बात कैसे कोई कह सकता है अगर उसको यकीन ना हो? अल्लाह अकबर। लेकिन जब मुशरिकीन मक्का ने देखा कि वो आवाज़ जिसको वो सिर्फ एक शख्स की पुकार समझते थे आज घर घर में गूंजने लगी है, और जिस तहरीक को उन्होंने सिर्फ सोचा कि ये चंद लोगों की बात है, एक गुब्बार है जो उड़ा है, आज वो एक तूफान की शक्ल अख्तियार कर गया, पूरे मुआशरे को उसने जेरो जबर कर दिया, तो मुखालफतों में शिद्दत आ गई। वही बात है ना, द मैन हू शोक दर्द। वो मौलाना हाली ने भी कहा ना कि वो क्या था कि जिसने दुनिया हिला दी, और कुछ इस तरह के अशआर है ना कि वो क्या बिजली की कौन थी ये थी जिसने अरब की जमीन सारी हिला दी। कल भी लोग हिले हुए थे, आज भी हिले हुए, तो साहिर उनका साहब। क्या गुनाह के इसका। अब यहां से आयत 5 से अगली आयतों में वो मंजर सामने रखिए कि वो बड़े बड़े 25-26 सरदार अबू तालिब के पास आए हुए हैं और जाके ऑप्शंस दे रहे हैं कि अपने भतीजे को समझाओ, हमारे मुंह ना लगे, हमारी मुखालफत ना करे। और क्या कहता है वो, अजाल अल आलिहता इलाहन वाहिदन, क्या इसने तमाम माबूदों को बस एक ही माबूद बना दिया। इन्ना हाजल शय्युन उजाब, ये तो बड़ी अजीब बात है। यानी उनकी जरा उल्टी खोपड़ी देखिए, कहते थे हमारे इतने खुदा हैं, 313 तो बुत बनाए हुए थे काबा में, इतने खुदा हैं और हम उनसे जाकर बेटा मांगते हैं फिर बेटी मिल जाती है। सोचिए, खुद मान रहे हैं कि हमारे 313 भी नकार हैं। तो ये मोहम्मद हमें कितनी अजीब बात कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप उन सब को छोड़ के बस एक से ही मांगने लग जाओ, गोया कि आप कह लें कि चांसेस बिल्कुल ही जीरो हो जाए। बात वाज़ है, किसी को 313 लोगों से उम्मीद हो कि ये मुझे मदद करेंगे, ठीक है, ये सब पैसे डालेंगे तो मैं एक चीज ले लूंगा, तो आप कहते हैं इन 313 को छोड़ो, वो एक बंदा उसके पास चले जाओ। तो मोटी अकल वाला तो यही कहेगा ना, क्या कहेगा कि भाई ये 313 समझो कि 10-10 भी डाल देंगे तो कुछ तो बन जाएंगे ना, और वो एक वो बेचारा क्या देगा। हालांकि अमली तौर पे वो देखें, वो 313 के आगे जाके अपना डब्बा फैलाता है तो लोग एक एक पाउंड डालते हैं, तो 313 ही पाउंड बनेंगे, और इल्ला ये कि कोई इससे भी छोटा डाल दे। और जिस एक को जाके अपनी बात अपनी कॉज समझाता है, वो एक बंदा ही कहता है सब किसी को ना बताना, मैं करूंगा बाकी काम। दुनिया में ऐसा होता है कि नहीं होता, हम सब जानते हैं। जर्रा जर्रा रेजगारी जमा करने से आप एक अमाउंट जमा कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। जरूरी है कि बेगर बन के आप काम करें, दीन के भी या दुनिया के भी। तो ये लोग इस बात को अपनी शक्ल में ले आते थे कि एक अल्लाह तो बेचारा मजबूर होगा कि वो हमें क्या देगा, तो हमें बहुत सारों से लेने दो। वही बात है जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, दिलाता है हजार सजदों से आदमी को निजात। जिसको एक रब का बनना आ गया, उस पर खैर के दरवाजे खुल गए। लोग कहते बहुत सारों को सुनाओ, अल्लाह कहते सिर्फ मुझे सुनाओ। इन नमश को बसी व खुश नहीं अल्लाह, अब मैं युजीबुल मुस्तर इजादाओ, कौन है जो मुस्तर की पुकार को सुने, कौन है जो दुखी की दुआओं को सुने, है कोई इला, है कोई माबूद। अब आप किताबो तौहीद में ये चीजें पढ़ रहे हैं ना, किस तरह इंसान को अल्लाह ताला की मार्फत होती है, सारी दुनिया मच्छर की नोक से भी छोटी लगने लगती है। बड़े बड़े लीडर के और सुपर पावर्स क्या, और बड़े के और छोटे क्या, फिर जहर नहीं आता लोगों का। खैर, वन तलकल मलो मिनहुम, और चल पड़े इनके सरदार ये कहते हुए, 25 सरदार एकदम गुस्से में आ गए। जब अल्लाह के नबी ने कहा लोगों एक कलमा बताऊं, बड़ा अच्छा कलमा है सुना, तो कहेंगे ये कहते हो कि ला इला इल्लल्लाह कहना शुरू हो जाए, चलो भागो। और निकलते हुए मुंह पे बुड़बुड़ाहट के अनिम शिव अवस बिरु अलाहतिकुम, चलो और जमे रहो अपने माबूदों पे। और अगर लफ्जी तर्जमा देखे ना, चलो उठो यहां से और सब्र करो अपने माबूदों पे। इन नहाजल शय्युन युराद, यकीनन इस बात में तो कोई गरज पोशीदा है। देखिए जाहिर लफ्ज कैसे हैं, इन्ना बेशक, हाजा ये लशय्युन, हाजा शय्युन क्या है, ये दीन का काम, ये दावत का नाम जो देते हैं, क्या है, युराद, इरादा की हुई है। यानी बजाहर नाम ये दीन का ले रहे हैं, अंदर इनके अपने कोई हिडन मोटिव्स हैं, ये मुराद है, गरज छुपी हुई है कोई इनकी, ये दीन के नाम के ठप्पे पे अंदर दौलत बना रहे हैं, ये इनके अपने फायदे इसीलिए इतना मोटिवेट करते हैं, ये कोई इनका अपना ही बेनिफिट होगा इसमें, वरना इनको क्या मुसीबत पड़ी है कि इसमें किसी के लोगों को इतनी बात करें। ये मुराद था उनका नबी सल्लम के जात पे इल्जाम कि आप इस दीन से कोई फायदा लेना चाहते हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये लफ्जी तस्वीर कशी है उस माहौल की, मक्का का माहौल आंखों के सामने आने लगता है, ऐसे लगता है अल्लाह के नबी खिताब कर रहे हैं, और मजमे में आम लोगों के साथ कुरैश के भी कुछ लोग मौजूद हैं। पहले तो सब बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे, मगर थोड़ी देर बाद इनमें से कुछ लोग उठे ये कहते हुए, चलो चलो यहां से, तुम लोग यहां खड़े हो, किसकी बातें सुन रहे हो, किसकी बातों में आ रहे हो, क्या इनकी बातों में आकर अपने माबूदों को छोड़ दोगे, चलो उठो जाओ अपना काम करो। और देखो इनकी बातों पे संजीदगी से गौर करने की कोई जरूरत नहीं है, इन सब बातों के पीछे कोई मुफाद छुपा हुआ, ये किसी के एजेंट है, ये किसी के लिए काम कर रहे हैं, और ये दावत तो बस इस गरज से है कि मोहम्मद अपना इक्तदार संभाल लें, बड़े बन जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम पे हुक्म चलाने का शौक बहुत है, इसलिए तुम अपने अकायद पर और जम जाओ, अपने माबूदों की परस्तिश पर मजबूती से जमे रहो और इनकी बातों पर ध्यान ना दो। इमेजिन ने जाए और कोई आपके बारे में ये जुमले बोल के उठ जाए। इसलिए दर्ज देने आती कि आपको बड़ा शौक है कि हम आपकी पूजा करें और आपको बड़ा बनाएं। और इस पे भी पढ़ के देखिए अब एक और तीसरा इतराज, मसमे न बिहाज फिल मिल्लतिल आखिरा, हमने ऐसी कोई बात पिछले दिन में तो कभी सुनी नहीं। यानी आखिर हमारा भी तो एक दीन है जो हमने विरसे में पाया है, हमारे भी तो बाप दादा की कोई रिवायात हैं, कुछ नस्ल दर नस्ल बातें हम तक पहुंची हैं ना, हमने तो ये बातें कभी ना सुनी, आप कहाँ से ये नई बातें लेके आ गए। इन हाजा इल्लख्तिलाक, ये तो नहीं है मगर एक घड़ी हुई चीज़, ये खुद से घड़ी हुई बातें हैं, हमने तो आज तक नहीं सुना। अब ये क्या बात है इख्तलाक, इख्तलाक देखिए खलक से बाब इफ्तियाल की वजह से, खाम खा बनाई हुई चीज़ यानी बनाना होता है ना खलक खालिक क्रिएटर, तो इख्तलाक खाम खा ही बना दिया। यानी कहते हैं ये क्या बात है जी कि घड़ी हुई बातें, कुरान खानी ना करो, मिलाद ना मनाओ, ये ना करो, सूत ना लो, हमने तो कभी नहीं सुनी ये बातें, ये मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। फिर एक और इतराज, उन्ज़िल अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना, क्या इसी पे नाजिल होना था ये जिक्र हमारे दरमियान। देखिए अल्लाह के नबी को डिग्रेड किया जा रहा है, बस एक यही तो रह गए थे ना जिनको अल्लाह ने सच समझा दिया, वो बड़े बड़े मजहबी लीडर हैं, वो दाढ़ियों वाले हैं, वो फुलाएं फुलाएं, क्या वो अल्लाह को नहीं नजर आते थे? क्या हम सरदारों और सरमायादारों से आला कोई शख्सियत अल्लाह को नजर नहीं आई भला बात बताने के लिए? आज भी देखिए यही टोन होती है लोगों की, क्या भला वो दीनदार नहीं, वो आलिम नहीं? परसों मैंने एक वीडियो देखी, बिलीव मी के अगर अपनी आंखों से ना देख रही होती तो मैं उसको कभी ना मानती, कि लोग दीन के नाम पर इतने बेवकूफ बन जाते हैं कि बच्चे भी वो हरकतें ना करें। एक मस्जिद है उसके अंदर एक पीर साहब बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, चोगा पहना हुआ है, सब्ज रंग का, लंबी सी पगड़ी दाढ़ी, बिल्कुल रिलीजियस शख्स हैं, और मस्जिद के बिल्कुल सामने आगे जहां मेंबर के होते उधर वो बैठे हैं और चारों तरफ लोग हैं, यानी खड़े हैं लोग बिल्कुल उनके सामने, और फिर उन पढ़े लिखे और अक्लमंद देखने में दाढ़ियों वाले सारे, एक बंदा आता है और उछलता कूदता उनके आगे जाके उनको सजदा करके, फिर वो जो नाचता हुआ पीछे जाता है और सब ये कर रहे हैं। वल्लाही कहने में मैं मुबालगा ना कर दूं, मुझे खौफ आ रहा है, आंखें देख के यकीन नहीं आ रही थी कि ये कोई मजाक है, किसी फिल्म का कोई सीन है, कोई ड्रामे में किसी ने मौलवियों को बदतमीजी की है, कोई दाढ़ियों वाले दीनदारों से रियल में ये एक्सपेक्टेड नहीं है, और शक्लें पहचानी जा रही हैं, नाम देखे जा रहे हैं कौन लोग हैं, और बड़े अकलमंद लोग दुनियावी लिहाज से बेवकूफ तो नहीं, बाल बच्चों वाले होंगे, कमाते खाते लोग होंगे, लेकिन वो बुजुर्ग साहब के सामने आके उछलते कूदते लुडियां डालते फिर सारे नाच रहे हैं खड़े होके, धमाल डल रही है, और ये मस्जिद के अंदर हो रहा है, नीचे मस्जिद की सफे बनी हुई है, तो अकल तो मारी जाती। आप दीन की बात करें कहेंगे ये कौन सी बातें आप सुना रहे हैं, ये क्या हो गया? बल हम फी शक के मिन जिक्री, अल्लाह कहते हैं असल पता कंक्लूजन क्या है, ये मक्का वाले हों या आज वाले हों, इनका मसला पता क्या है? इनका सबसे बड़ा मसला शक है, इनको मेरे जिक्र के मामले में शक हो गया। बल लम्मा ये जोक अजाब, बल्कि अभी तक उन्होंने मेरे अजाब का मजा नहीं चखा, यानी इनकी बड़बड़ करती हुई जुबानें इसलिए बहुत बोलती हैं नबी के खिलाफ कि अभी इन पर अजाब का कोड़ा नहीं पड़ा। अमिंदहुम खजाइन रहमती रब्बी कल अजीज़ुल वहाब, क्या इनके इख्तियार में है आपके रब की रहमत के खजाने? कौन सा? अल अजीज़ अल वहाब, जो बहुत ज़बरदस्त बहुत अता करने वाला। यानी बताओ अल्लाह की रहमतों के खजाने किसके पास हैं? औलाद किससे चाहिए? माल किससे चाहिए? दौलत इज्जत सेहत बीमारी से परेशानी से निजात किससे चाहिए? है कोई देने वाला? है कोई करने वाला? है कोई दाता? क्या अल्लाह इनसे पूछने का मुकल्लफ था कि मैं नबूवत और रिसालत किसको दूं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाऊं या उतबा को बनाऊं, रबिया को बनाऊं? इनसे पूछता? अमलहुम मुल्कु समावाती वल अर्दी वमा बैनहुमा, कि इनके पास है बादशाही आसमानों और जमीन की और जो कुछ इन दोनों के माँ बहन है इन सब की। ये जो इतराज कर रहे हैं नबी की नबूवत पे, जरा इनसे पूछो तुम्हारे पास है ही क्या? फल यर तकू फिल असबाब, तो चाहिए कि ये चढ़ जाए रस्सियां तान कर आसमान पे। ये जो लफ्ज़ है ना फल यर तकु, ये रकी से है, ये वही लफ्ज़ है जिससे रुकिया आता है, रुकिया करना फूकना, और रका यरकु यानी तरका में जब बदला तो इससे मुराद बुलंदी की तरफ चढ़ना। एक हदीस में भी आता है कि अल्लाह क़यामत के दिन कहेंगे उस शख्स को जिसने कुरान पढ़ा कि चढ़ता जा और जन्नत के मुकाम पर पहुँचता जा। अल्लाह ताला कहते हैं जो आसमानों पर जाकर जरा अल्लाह की रहमत के खजाने रोको इस शख्स पर, कल अकेले थे, फिर अबू बकर मिल गए, फिर उमर मिल गए, फिर अगले दौर में इनको और भी बड़े मिलने हैं। जाओ इस सारे रहमत के खजाने को रोक के दिखा दो, तुम बहुत बड़े बनते हो, अकड़ कितना है तुम्हारी गर्दनों में, असल में तुम अल्लाह की नजर में क्या हो। आयत 11 में कुफारे मक्का की असल खोल दी, जुन्द मा हुनालिका, ये भी एक लश्कर है, मा मैंने छोटा सा, वेरी शॉर्ट स्मॉल, जो मा हुनालिका महजूम मिन अल अज़ाब, पहले हलाक किए गए लश्करों में से एक लश्कर है जो अब यहां हलाक होगा, ये मुराद है। अगली आयत में कौम नूह, हूद, कौम लूत, शुएब और आले फिरौन का इंजाम आने वाला है। अल्लाह ताला ने यहाँ इशारा दे दिया कि जो पिछली कौमों के साथ हुआ नबियों को झुठलाने के नतीजे में, आज मक्का वाले वही रविश अपनाए हुए हैं, तो आज इनके साथ भी उसी बात के फैसले हो गए हैं। जैसे कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह वादुम व फिरऔन ज़ुल औताद, इनसे पहले झुटलाया था कौम नूह, कौम आद और मेखों वाले फिरौन ने। सबको जानते हैं फिरौन तक, आगे जुल औताद क्या है, औताद वतद से है और जू कहते हैं वाला। कहते हैं कि फिरौन जब अपने लश्करों के साथ सफर करता था ना, तो घोड़ों और खच्चरों की कसीर तादाद को सिर्फ खेमों के खूंटे उठाने के लिए खास किया जाता था। इतना बड़ा इसके साथ लश्कर होता था कि जहां पड़ाव करना होता था, वहां जो खेमे लगाते थे और उसके कील कील औताद वतद असल में कील ही हैं, उनको जमा करने के लिए इतने ज्यादा जानवर साथ लेके जाने पड़ते थे, और इस पे फख्र करता था। जब इसके काफले किसी जगह से उठते थे ना, तो पूरी जमीन में मेखों के निशान थे, और इस पे ये फख्र करता था कि देखो मेरा कंट्रोल कितने लोगों पे है, कि जहां से हम गुजरते हैं वहां हम क्या हालात कर देते हैं। कसरत अफवाज की तरफ इशारा। आज भी अगर आप मिस्र में फिरौन का कोई बुत देखे ना, तो उसके हाथ में कील होता है, हाथ में एक खास ऐसे नेल सा होता है, ये उनके कल्चर में आ चुकी है चीज। इसी तरह ज़िल औताद का एक और मानी आगे भी हम पढ़ेंगे कि नेहें लगवा देता था हाथों में जो इसकी मुखालफत करता था। सूली पे चढ़ाने का तरीका फिरौन ने इजाद किया था, दीवार के साथ किसी के हाथ पांव खड़े करके, तो हाथों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े बड़े कील लगा देता था। आज किधर है फिरौन? किसी म्यूजियम में उसकी मम्मी नमक से लिपटी हुई स्याह रंग की शक्ल में पड़ी हुई है ना, लोग उसको 100 पाउंड दे के देख लें तो देख लें, लेकिन उसकी औकात अल्लाह के हाथों तो नहीं है ना। ये तकबर वाले लोग है। देखिए सूरत स्वाद जो है ना, ये अना पे चोट डालती है, बड़ाई। जिस सर ने अल्लाह के हुक्म को सुनकर सरकशी की, अल्लाह ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। वसमूद व कौम लूह व असहाबुलैका उलैकल अहज़ाब, और कौम समूद, कौम लूत और बन वालों यानी कौम शुएब ने, ये हैं वो हलाक होने वाले लश्कर। यानी तारुफ करवाया जा रहा है मक्का वालों से इन लोगों का जो पहले हलाक हो गए। इन कुल्लु इल्ला कज़्ज़बर रुसुल, इन सब ने ही तकजीब की थी रसूलों की। फिर क्या हुआ? फहक का इकाब, बस इन पर हक हो गया मेरा इकाब यानी मेरी सजा के वो मुस्तहिक हो गए। वमा यंजुरु हाउला इल्ला सैहतन वाहिदतन, और ये लोग भी अब मुंतजिर नहीं है मगर सिर्फ एक चिंगाड़ के। ये लोग कौन है? मक्का वाले, और आज वाले भी जो अल्लाह के नबी के कार्टून बनाते हैं और अल्लाह के नबी की तौहीन करते हैं और अल्लाह के नबी की नबूवत पे एतराज करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं सिर्फ एक चिंगाड़ आएगी, और जब वो आएगी मा लहा मिन फवाक, तो उसमें कोई वक्फा ना होगा। यानी माजी की कौमों पर अल्लाह के अजाब एक मुसलसल तेज आवाज और चिंगाड़ की सूरत में भी आते थे। अगर मुशरिकीन ने मक्का अपनी हठधर्मी पर इसी तरह कायम रहे, तो किसी वक्त इन पर भी अजाब आ सकता है। और आज आप देखिए कि साइंस इस बात को वेरीफाई करती है कि साउंड वेव्स जो है ना, सौती लहरें जो आवाज के साथ उभरती हैं, इनमें इतनी जबरदस्त किस्म की एनर्जी होती है कि किसी भी मादी निजाम को दरहम बरहम कर देती हैं। बस आप देखिए कि कहीं बहुत मशीनें चलती हैं ना, जैसे बड़े बड़े अगर फैक्ट्रीज हैं और उसके अंदर झक झक झक, तो उनके इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स होती हैं ना, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। इसीलिए जो इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं वो शहर से थोड़ी बाहर बनाई जाती हैं, मुसलसल आवाज़ की वजह से होता है। इसी तरह एक जगह किसी ने बताया कि एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब घर थे ना वहाँ लोगों के, तो जब जहाज़ नीचे उतरने वाले होते हैं, आपको पता है कि बहुत गड़गड़ाहट है, तो उसके साथ उनकी छतें हिल गई और उसके अंदर स्क्रैचेस आ गए। तो जब एक आवाज़ थोड़ी सी इंटेंसिटी के साथ आए, और थोड़ी देर के लिए आती है चंद सेकेंड, तो तो ये हालात हैं। तो जिस दिन क़यामत का वो धमाका आएगा जिसमें कभी खामोशी नहीं होनी, तो सारी दुनिया की बिल्डिंगें इर्तआश के साथ फटनी जाएंगी। और अल्लाह बताता है कि जब अल्लाह किसी को हलाक करने का फैसला कर ले, सिर्फ एक ज़ोरदार आवाज़ ही काफ़ी है, उसको सांप बिच्छू नहीं उतारने पड़ते, अजय नहीं डालने पड़ते, वही चीज़ें जो बड़ी खूबसूरत होती हैं वो गिर जाती हैं। और ये जो लफ्ज़ है ना फवाक, फोक से, फवाक कहते हैं दो आवाज़ों के बीच की खामोशी। कभी आपने भैंस का दूध निकालते हुए किसी को अगर देखा हो, तो जो दूध निकालने वाले होते हैं ना, वो जब एक दफ़ा दूध निकालते हैं ना, तो फिर उसके थन में जो दूध होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसको छोड़ते हैं, फिर दोबारा दूध आता है। इसी तरह बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि जब थोड़ा सा दूध जानवर का निकाल लिया जाता है, तो ज़ाहिर उसके जिस्म में से दूध ख़त्म लगता है, फिर उसके बच्चे को वहाँ भेजते हैं, जो ही बच्चा माँ का दूध पीने लगता है ना, तो दोबारा दूध आता है। बिल्कुल जब उसके थन भर जाते हैं ना, तो फिर वो ज़बरदस्ती उस बच्चे को हटा कर तो उसका दूध निकालते हैं। तो एक दूध की धार से दूसरी धार के बीच के वक्फे को फवाक कहते हैं। वक्फा भी यही है, यानी क़यामत का धमाका ऐसा होगा, जब वो आएगा तो बस शोर ही शोर होगा। दुनिया में आप देखिए कोई भी सायरन बजता है तो बीप होते ना, टेन 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 टेन, ऊपर नीचे होता है ना। यहाँ बताया जा रहा है कि जब नफ़ा फूकेगा तो उस वक़्त बीच में इतना भी वक्फा नहीं होगा कि कोई संभल सके। आवाज़ यार वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और फिर जब आएगी लोगों के ऊपर तो उस वक़्त उनको लग पता जाएगा कर क्या रहे हैं, हो क्या रहे। और वमा यंज़ुरु हाउलाई, और ये लोग भी अब मंतज़िर नहीं हैं, इल्ला सैहतन वाहिदा, मगर एक पुकार का। इमेजिन करें, ऐसे लग रहा है सब मैदान में खड़े और मंतज़िर हैं कि दूर से अब जहाज़ आए और उसकी आवाज़ को हम सुने। मालहा मिन फवाक, जिसमें कोई वक्फा ही नहीं होने वाला। वकालू, और उन्होंने कहा रब्बना जिल्लना कित्तना क़ब्ल यौमिल हिसाब, और वो कहते हैं हमारे रब हमारा हिस्सा तो तू हमें जल्दी दे दे यौम हिसाब से पहले। मजाक, तंज, जो अजाब का लाना है ना आज ही आ जाए। ए मोहम्मद, ये जो आप हर वक्त डराते हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरने के बाद ये होगा, हिसाब होगा, सजा दी जाएगी, तो हमारे परवरदिगार ये काम आज ही हो जाए। बेहतर है कि आज ही हमारा कच्चा चट्ठा साफ कर दे, हमारी जो शीट है नाम अमाल है वो आज ही हमारे हाथ में दे दे। ये कौन कह सकता है जिसको यकीन है कि मेरा हिसाब नहीं होना। लफ्ज़ देखिए कित्ता, कित्ता के मानी हिस्सा होता है, हिसाब के रजिस्टर के लिए भी ये लफ्ज़ बोलते हैं चट्ठा। एक होता है कद, पढ़ चुके सूरत यूसुफ में, कद और कद फ़र्क है। कद है तवील सूरत में किसी चीज़ का भरना, कद्दा वो है ना, वह इन काना कमीज़ा कुद्दत मिन दुबरी ही, वही लफ्ज़ है ये। हमारा कद भी तो लंबाई में भरता है ना, ये कद भी है। और कित उसका अपोजिट है, विड्थ वाइज, यानी हमारा हिस्सा हमें पहले ही दे दे, मुराद हिस्सा है। ऐसा रजिस्टर जिसमें कारोबार की आमदन और हिसाब किताब लिखा जाता है, ताकि पता चले नफ़ा है कि नुकसान है, यानी हमें अभी पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं, आज ही बता दे दुनिया में। अब आप देखिए कि यहाँ तक की आयतों में एक तरह से ऐसे लग रहा है कि उनका ढीठपन दिख रहा है। आपको ये सब सुनते हुए नहीं महसूस हो रहा कि इतने स्टबन थे? अल्लाह कभी ऐसे तो नहीं लोगों को मरवाता, अल्लाह ताला ऐसे तो नहीं नबी को कहा मक्का को छोड़ के चले जाओ, इतने बुरे साथी थे आपके पास वहाँ। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं यस्ता जिलू न कबिल अजाब, अजाब की जल्दी करते हैं, मजाक करते हैं, इनको लगता है ये होने का नहीं, ये होगा नहीं, मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं, करके दिखा दो इनको। और आपको पता है कि ये जो खबर दी गई ना कि ये एक लश्कर है, इन लश्करों में से जुंदुन जुंदु मा हुनालिक मखज़ूमुम मिन अल अहज़ाब, ये बड़े बड़े लश्करों में से शिकस्त पाया हुआ एक छोटा सा लश्कर है। इशारा है इसमें कि चंद साल ठहर जाओ, यही लोग ग़ज़वा बदर के दिन मारे जाएंगे, और यौमुल फ़त्ह भी मुराद है इससे, उस दिन जब बातिल होंगे। और हुनालिका मकान बईद की तरफ इशारा होता है, दूर की चीज़ की तरफ इशारा करना। और माँ बतौर ताकीद, ताज़ीम या तहकीर के लिए, यानी अल्लाह कहते हैं ये जो मैंने वादा दिया ना ये होगा, जब होगा तो तुम उसको देखोगे। फिर इसी तरह हमने देखा कि ये ऊपर आसमानों में चढ़ जाए, फल यर तकू फिल असबाब, तो ये ऊपर चढ़ के क्या करे, तो इसका तर्जमा क्या है कि आसमान पर चढ़े और इस वही का सिलसिला मुनक़ते करवा दें जो अल्लाह के नबी पर आ रही है। असबाब सबब की जमा, लुग़वी मानी इसके होते हैं हर वो चीज़ जिसके ज़रिए मतलूब तक पहुँचा जाए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। रस्सी के लिए भी यही है, दरवाजे के लिए भी यही मानी आता है। वो रास्ते जिनसे फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं या सीढ़ियों के ज़रिए से आसमान के दरवाज़ों तक पहुंचना, वही बंद करना, ये सारे इसके मानी है। मतलब अल्लाह इन पे वही दे रहा है, अल्लाह अपने नबी पर वही उतार रहा है, तो ये अगर कर सकते हैं तो जाके उतार लें। इस तरह से ये बातें करें। आप बताइए कि आप इन सारी बातों को सुनते हैं क्या फील कर रहे हैं? एक लफ्ज या एक जुमले में अगर कोई आपसे कहे कि आप ज़रा इस रवैये को वाजे तो करें, तो क्या समझ आ रही है? सरकशी, बिल्कुल सही जी। और तकबर जी, और तकबर जी, आप बताएं। हठधर्मी जी, जिद, ठीक है जी, गरूर है, खुद को बड़ा समझते हैं, और ठीक, खुशफहमी है इनकी, अना है इनकी, ठीक है, और जी आप ढीठपन है ना। क्या आज भी लोग इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं इस्लाम के खिलाफ? आप सर फोड़ें, आप प्यार करें, आप जरा इग्नोर करें, आप इधर के उधर उधर के इधर कुछ भी कर लीजिए, उनको समझ नहीं आती। और आप देखिए इन सारी आयतों में ऐसे लग रहा है कि बस अल्लाह की तरफ से धमकी है, कर लो जो करते हो। देखो बुरा अंजाम तक उनका दिखा दिए, और आज भी लोगों को अजीब नहीं लगता ये क्या कहते रहते हैं हर वक्त, एक को मानो एक को मानो। इवन गैर तो छोड़िए, मुसलमानों को इस पे बड़ा इतराज है कि ये क्या कुरान सुन्नत की बातें कहते हैं, क्या हमारे बड़े ठीक नहीं थे, क्या हम जो करते हैं वो ठीक नहीं था, ये है वो है दिस एंड दैट। तो फिर मुझे और आपको क्या करना है? अब इसके जवाब में हमने क्या करना है? हमने भी उनको धमकियां दे के आ जाना है, या हमने भी उनकी पकड़ की बात करनी है? देखिए अल्लाह को जो बात जचती है वो हम क्यों करें? कभी किसी को मत कहेंगे तुम आग में जाओगे, तुम जल के राख हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाएगा, बस आप और मैं उनके लिए दुआ करें। नबी ने इन्हीं रवैयों को इख्तियार करने वालों के लिए रातों को खड़े होकर दुआएं मांगी हैं। हिकमत से रखा, सब्र किया, बर्दाश्त किया, ताल्लुक उनके नहीं तोड़े, इस तरह से बातें की कि जैसे कोई किसी बहुत चाहने वाले से करता है। जब कभी किसी की मुखालफत से दिल में रंज और गुस्सा इस हद तक बढ़े कि जुबान पे कोई कड़वी बात आने लगे ना, तो फौरन उस वक्त खुद को रिलैक्स किया करें, नहीं तो ना सही, मेरा इसके बगैर कौन सा गुजारा नहीं, जाए फिर फाड़ में, जाए फिर, नहीं तो ना सही, आप देखेंगे एकदम आप ठंडे होंगे। असल में तो हम किसी की मोहब्बत में जल के कुड़ रहे होते हैं, लेकिन मुंह से जुमले ऐसे कड़वे निकलते हैं कि जिसकी बेस पे फिर अगले ने करना तो वो काम वैसे ही नहीं होता, लेकिन वो हमारे उस जुमले की वजह से नहीं करता। मेरे आज के सबक के तीन हिस्से थे, एक हिस्सा हम कर चुके। यहां बता दिया नबी के सामने जो लोग थे उनके हालात क्या थे,